हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। असल में राजवीर उन दोनों को हनीमून के लिए शिमला भेज रहा था। वैसे तो वो चाहता था कि वे दोनों विदेश घूमने जाएं, मगर क्योंकि गीत के पास वीज़ा नहीं था और ना ही उसका पासपोर्ट बना था, तो इसलिए उसका बाहर जाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने उनके शिमला जाने की तैयारी कर दी थी। इस बारे में उनकी वंश से बात भी हो चुकी थी और वंश मान गया था जाने के लिए। वंश का प्लान था कि वो वहां जाकर एहसास कराएगा गीत को कि उसने उसके साथ शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। वे लोग होटल की जगह अपने फ्लैट में रुकने वाले थे और उनके पहुंचने से पहले फ्लैट में उनके लिए हर तरह का इंतजाम हो चुका था। राजवीर उन दोनों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट चला गया। जब वे लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे तो राजवीर ने गीत का हाथ पकड़ लिया। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटा? अपने मॉम डैड की याद आ रही है तुम्हें? गीत की आंखें भर आईं। मैं भी तो तुम्हारा पापा हूँ और देखना, तुम्हारी माँ भी तुम्हें देख रही होगी। ऐसे उदास नहीं होते बेटा, राजवीर ने गीत और वंश से कहा। तुम लोगों के लिए वहाँ फ्लैट में सारा सामान है। अगर तुम लोग खाना बाहर से मंगवाना चाहो तो बाहर से मंगवा लेना। अगर तुमने एक बार मेरी बेटी के हाथ का खाना खाया तो कहना ही क्या, जो कि बहुत टेस्टी होता है। उन दोनों के शिमला जाने से नीता घर पर परेशान थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वंश गीत के साथ कहीं भी अकेला जाए, मगर मजबूरी थी तो वो कुछ नहीं कर सकी। गीत फ्लाइट में पहली बार बैठ रही थी। जब प्लेन टेक ऑफ होने लगा तो उसे बहुत डर लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कसकर अपनी सीट के हैंडल को पकड़ा हुआ था। वंश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम इस प्लेन में बैठकर ही नहीं, मेरी जिंदगी में आकर भी पछताओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। तुम खुद कहोगी डैड से कि तुम्हें तलाक चाहिए और डैड भी कहेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की तुम्हारी मुझसे शादी करके। वे लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और चंडीगढ़ से उन्हें शिमला बाय रोड जाना था, मगर उन्हें वहीं पर रात हो चुकी थी। जब वे लोग चंडीगढ़ पहुंचे तो उनके लिए गाड़ी पहुंच चुकी थी। राजवीर ने उनके लिए पर्सनल गाड़ी वहां पर अरेंज करवा दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि वे लोग आराम से घूमें। जैसे ही वे लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकले तभी एक आदमी उनके पास आया। आपकी गाड़ी बाहर है सर, वंश बिना पीछे देखे आगे चल रहा था। गीत उसके पीछे जल्दी जल्दी भागकर उसके साथ आ रही थी। वंश गाड़ी में बैठता है तो गीत भी उसके साथ आकर बैठ जाती है। बहुत रात हो गई थी, वे लोग वहां से शिमला की तरफ निकल जाते हैं। गीत ने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था, उसे बहुत स्ट्रेस था तो अब उसे भूख लग रही थी। उसका मन किया कि वो वंश से कह दे कि उसे कुछ खाना है, मगर जब उसने वंश के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कहने की। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वंश ने गाड़ी का म्यूजिक ऑन किया और शिमला की तरफ जाने लगे। वो चोरी से गीत के चेहरे की तरफ भी देख लेता था कि उसके क्या इम्प्रेशंस हैं, मगर उसका चेहरा जैसे सुबह था अभी भी वैसा ही था। उसके मन में क्या था उसका चेहरा नहीं बता सकता था। गीत चलती गाड़ी में सो गई थी। खुद तो चैन से सो रही है, मैं जहाँ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। इतनी भी अकल नहीं है कि आगे की सीट पर बैठकर सोते नहीं। वंश को उस पर गुस्सा आ रहा था। वंश को भी भूख लग रही थी। उसने एक जगह गाड़ी रोकी। उसने सोई हुई गीत के चेहरे को ध्यान से देखा। एक अजीब सी मासूमियत, अजीब सी एक फ्रेशनेस थी उसके चेहरे पर। सुबह का किया हुआ मेकअप अब तक तो उतर चुका था। एक ढाबा देखकर वंश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने से गीत की भी आंख खुल गई। वंश गाड़ी में से उतर गया, मगर गीत गाड़ी में ही बैठी रही। उसे वंश ने उतरने को नहीं कहा था, इसलिए वो नहीं उतरी। जब उसने देखा कि गीत उसके पीछे नहीं आ रही है तो वो गाड़ी तक वापस आया। अगर खाना खाना हो तो नीचे आ जाओ, उसने बड़ी ही रूडली तरीके से कहा। गीत को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और उसे वॉशरूम भी जाना था। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, गीत ने वंश से कहा और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसने अच्छे से अपना चेहरा धोया और बालों को पानी से ठीक किया। फिर वो वंश के पास वापस आने लगी। चेहरा धोकर उसने अपना सारा मेकअप उतार दिया था, सिर्फ आंखों में काजल बचा था। बनारसी साड़ी जो उसने सुबह से पहनी थी, पहले उस साड़ी को कंधे पर पिन से लगाया गया था, अब उसने वो पिन को खोलकर साड़ी को अपने कंधों पर लपेट लिया था। शायद उसे सर्दी लग रही थी। उस सामने से आ रही लड़की में इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी को अपनी तरफ खींच सकता। वो उदासी भरी सिंपल सी लड़की थी। वो खूबसूरत थी, मगर इस वक्त उसके दिमाग में उलझन के अलावा जो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं था। वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बेहद कन्फ्यूज और उलझी हुई थी। वंश ने उस अपनी तरफ आती हुई लड़की को देखा। वंश की नज़र गीत के होंठ के पास तिल पर जाती है, जो शायद पहले मेकअप में कम दिखाई दे रहा था, अब वो चमकने लगा था। वो तिल वंश को अपनी तरफ खींचता है। वंश की निगाह उसके होंठों और उसके तिल के बीच उलझ गई थी। वो वंश के दिल में अजीब सी हलचल मचा देता है, मगर जल्दी ही उसने अपना चेहरा घुमा लिया। वो उसके पास आके बैठ गई। क्या खाओगे तुम? यहाँ तो ऑयली है, वंश ने कहा। कोई बात नहीं, जो भी है मैं खा लूंगी। वहाँ पर छोले भटूरे खाने के लिए आ गए थे। वंश ने तो वो नहीं खाए, मगर गीत ने खा लिए थे। इतना ऑयली खाना कौन खाता है, वो उसे देखकर सोच रहा था। वो सुबह की भूखी थी, उसने आराम से खाना खाया। उसे खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। वंश ने सिर्फ कॉफी पी और वे लोग वापस चल पड़े। मेरी बात सुनो तुम, अब सोना नहीं है, नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी। अभी अपना सफर रहता है, समझी तुम, वंश ने गीत से कहा।